पाठ 18, पाप का रहस्य। हमेशा से शैतान का ये प्रयास रहा है कि मनुष्यों का मन को यीशु की ओर से हटाकर मनुष्य की ओर खींचकर व्यक्तिगत जिम्मेवारी से वंचित रखे। जब यीशु की परीक्षा कर रहा था तो शैतान यहां हार गया। जब पतित मनुष्य के पास आया तो वहां उसे सफलता मिली। क्रिश्चियनों का सिद्धांत को बिगाड़ दिया गया। पोप और उसके पुरोहितों ने लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार ले लिया और यीशु के पास जाने के बदले उनके पास जाने लगे। सच्चाई को छिपाने के लिए जिसके द्वारा वे दोषी ठहरते, बाइबल को पढ़ने नहीं दिए। लोग बुरी तरह से ठगे गए। उन्हें सिखाया गया कि पोप और उसके पादरी ख्रीस्त के उत्तराधिकारी हैं, जबकि असल में वे शैतान के हैं। तब वे उनके सामने झुकते हैं तो वे शैतान की उपासना करते हैं। जब लोग बाइबल मांगने लगे तो पादरियों ने उन्हें बताया कि उनके लिए अपने से बाइबल पढ़ना खतरा है। उनके हाथ में बाइबल देने से पादरियों को दोष मिलेगा। इन ठगों के ऊपर भरोसा करने के लिए सिखाया गया और उनके मुंह से जो वचन निकले उसे ईश्वर के मुंह से निकला हुआ समझने की सलाह दी गई। लोगों के मन को सिर्फ ईश्वर वश में कर सकता है। उसे उन लोगों ने कर लिया। यदि कोई अपने ही विश्वास के अनुसार यदि चलना चाहे तो उन पर वैसा ही घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा जैसा शैतान और यहूदियों ने यीशु को देखा था, और वे उसके खून के प्यासे बने थे। मैंने उस समय को देखा था जिस वक्त शैतान विजयी हुआ था। धर्म की पवित्रता और विशुद्धता रखने के कारण बहुत से मसीही लोग भयंकर रूप से सताए गए थे। बाइबल को घृणा कर इसे संसार से ही उठा फेंकने का विचार था। बाइबल पढ़ने वालों को मृत्युदंड देने की धमकी दी गई थी। इस किताब की प्रति जहां भी मिले उसे जलाने का भी आदेश था। परंतु मैंने देखा कि इस पर ईश्वर की विशेष दृष्टि थी। उसने उसकी रक्षा की। भिन्न भिन्न समयों में बाइबल की प्रतियां बहुत कम दिखाई देती थीं, फिर भी ईश्वर ने इसे बचा ही लिया। अंतिम दिनों में ये इतनी ज्यादा मात्रा में छापी गई कि हर व्यक्ति के हाथ में कम से कम एक हो गई। जब बाइबल की संख्या बहुत कम थी, उस वक्त मसीह के कारण सताए जाते थे, उनको इससे सांत्वना मिलती थी। इसको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ी जाती थी, और जिनके पास बाइबल रहती थी वे अपने को बड़े भाग्यशाली होने का दावा करते थे और बाइबल को पढ़कर सोचते थे कि मैंने साक्षात ईश्वर से ही बातें की हैं। बाइबल पढ़ने से उन्हें ऐसा लगता था मानो यीशु और उसके चेलों से मुलाकात हुई है। परंतु इस प्रकार का बहुत सा अवसर ने उनके प्राणों की बलि चढ़ा दी है। यदि किसी को बाइबल पढ़ते देखते तो उन्हें पकड़कर सिर काटने की जगह या अंधकार जेल में भूख से मरने के लिए लाते थे। शैतान ने उद्धार की योजना को बिगाड़ने में सफलता पाई। यीशु को क्रूस काट पर मार डाला गया, पर वो तीसरे दिन जी उठ गया। उसने अपने चेलों को बताया था कि क्रूसघात और जी उठना भी उसी के फायदे के लिए होंगे। जो यीशु पर विश्वास करते थे उन्हें वो विश्वास दिलाना चाहता था कि जैसी व्यवस्था यहूदियों की बलिदान प्रथा चलती थी वो यीशु के मरने पर बंद होगी, वैसा ही वो उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता था कि यीशु के मरने पर 10 आज्ञा भी उठ गईं। मैंने देखा कि बहुत लोग शैतान की इस योजना को ग्रहण कर लिए। जब ईश्वर की पवित्र आज्ञा को पांवों तले रौंदी गई तो सारा स्वर्ग क्रोध से भड़क उठा। यीशु और स्वर्ग के सारे दूतगण ईश्वर की व्यवस्था का मर्म जानते थे। उन्हें मालूम था कि ईश्वर अपनी व्यवस्था का एक बिंदु भी ना उठाएगा और ना तोड़फोड़ करेगा। मनुष्य की यह आशाहीन दशा ने स्वर्ग के लोगों को गहरा शोक में डाल दिया। इस दशा ने या मनुष्य की आज्ञोल्लंघन ने यीशु को क्रूस पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। यदि उसकी व्यवस्था बदली जाती तो मनुष्य यीशु के नहीं मरने पर भी बच जाता। यीशु की मृत्यु ने पिता की आज्ञा या व्यवस्था को नहीं बदला, पर इसे और मजबूत किया। उसने इसे सम्मान किया, विस्तार किया और सबको पालन करने के लिए जोर दिया। यदि शुरू से मंडली शुद्ध और दृढ़ रहती तो शैतान को ठगने और व्यवस्था को रौंदने का मौका नहीं मिलता। इस योजना के तहत शैतान सीधा ईश्वर का राज्य को स्वर्ग में और पृथ्वी में बिगड़ाना चाहता है। उसका उपद्रवी विचार ने उसे स्वर्ग से निकाल बाहर किया। उपद्रव कर अपने को बचाने के लिए वह चाहता था कि ईश्वर उसकी व्यवस्था को बदले। ईश्वर ने शैतान को स्वर्गदूतों के सामने कह दिया कि उसकी व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। शैतान को मालूम है कि यदि कोई मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करे तो उसे मरना होगा। शैतान ने चाहा कि इससे और आगे बढ़ना है। शैतान ने अपने संगी दूतों से कहा कि कुछ लोग तो व्यवस्था का पालन करने में इतने मजबूत हैं कि उन्हें भ्रम जाल में नहीं फंसाया जा सकता है। 10 आज्ञा समझने में इतना सरल है कि वे इससे दूर नहीं हट सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चौथी आज्ञा को बिगाड़ना है। वही है जो ईश्वर को जीवित प्रमाण देता है। उसने अपने उत्तराधिकारियों को सख्त बदलने की बात कही। उसने 10 में से एक ही को बदली की, जो ईश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाता है। शैतान ने यीशु का गौरवपूर्ण पुनरुत्थान को दिखाकर कहा कि पहला दिन जी उठने के बाद यीशु ने सप्त को 7वां दिन के बदले पहला दिन में बदल दिया है। इस तरह से शैतान ने पुनरुत्थान को लेकर अपना मतलब पूरा करने में लगाया। शैतान और उसके दूतों ने देखा कि उनकी यह युक्ति बहुत काम में आया, क्योंकि क्रीस्त पर विश्वास करने वाले लोग मान गए। एक दल के लोग उसे धार्मिक पतन के रूप में देखने लगे तो दूसरा दल ने ग्रहण कर लिया। बहुत प्रकार की गलतियां दिखाई जाएंगी और इन्हें जोश के साथ सामना करना था। ईश्वर ने अपना वचन को स्पष्ट रूप से बताया है, जिससे पता लग जाता है कि इसमें परंपरा की रीति विधियों और गलतियों से ढाका गया है। किंतु स्वर्ग से लाया गया धोखा जगत में तब तक प्रचार किया जाएगा जब तक कि यीशु दूसरी बार नहीं आता है। फिर भी ईश्वर ने इसके विषय में चेतावनी देना नहीं छोड़ा है। मंडली का अंधकार दशा में भी और सताए जाने पर भी ईश्वर के विश्वासी लोगों की कमी ना हुई, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा को पालन करते ही आ रहे हैं। मैंने देखा कि जब यीशु मृत्यु का दुख उठा रहा था तो बुरे दूत आश्चर्य से भर गए थे, पर मैंने देखा कि स्वर्गदूतों का दल में आश्चर्य करने की नौबत नहीं आई। जब प्रभु जो जीवन दाता है उसने अपने इस ऐश्वर्यपूर्ण काम से स्वर्ग का वातावरण को आनंद से भर दिया, क्योंकि उसने मृत्यु की बेड़ी को तोड़ी फिर विजयी होकर कब्र से निकल आया। इनमें से यदि किसी एक को मानना था तो क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन ही अच्छा होता, पर मैंने देखा कि उनमें से कोई भी दिन बदले जाने योग्य नहीं था। फिर भी उन्होंने सप्त दिन को बदले जाने का जैसा तैसा कारण बताया। इन दोनों मुख्य घटनाओं का स्मरणीय दिवस हैं। इसमें प्रभु भोज लेने की विधि ठहराई गई है, जिसमें रोटी प्रभु की देह का प्रतीक है तो अंगूर फल का रस उसके बहाए खून का। इसके खाने पीने से हम उसकी मृत्यु को दिखाते हैं कि जब तक प्रभु ना आवे ऐसा ही करते रहेंगे। इस दृश्य का स्मरण कर उसकी मृत्यु की घटना को मन में ताज़ा याद करते हैं। उसके पुनरुत्थान से हम यह याद करते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम पानी रूपी कब्र में गाड़े जाते हैं, और फिर उसके जी उठने से हम पानी से ऊपर उठकर नया जीवन जीते हैं। मैंने देखा कि ईश्वर की व्यवस्था सदा स्थिर है और वह नई दुनिया में भी निकलकर अनंत काल तक स्थिर रहेगी बिना बदला हटके। जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी तो यीशु भी वहां था पिता के साथ, और सारे स्वर्गदूतगण आनंद से जयध्वनि कर रहे थे। उसी समय सप्त की नींव भी डाली गई या उसे स्थापित किया गया। सृष्टि के 6 दिन बाद ईश्वर ने अपनी रचना के सारे कामों को छोड़कर विश्राम किया। उसने 7वां दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। उस दिन उसने विश्राम किया। मनुष्य के पाप में गिरने के पहले ही सप्त पालन का नियम बनाया गया था। आदम और हवा और सारे स्वर्गदूत सप्त मानते थे। ईश्वर ने 7वां दिन को विश्राम कर आशीष दी और पवित्र भी किया। मैंने देखा कि सप्त कभी भी नहीं उठाया जाएगा, पर उद्धार पाए हुए संत लोग और पवित्र दूतगण ईश्वर के सम्मान में अनंत काल तक मानते रहेंगे। आधारित पाठ 2। थिसलूनी 27, दानियेल 7 आयत 25।